श्रीमद् भागवतम के इस श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय पर आज चर्चा होगी, तो कृपया इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे। मैत्रेय उवाच निशम्यात्म भुवा गीतम् कारणं शंखयोजितः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः निशम्यात्म भुवा गीतम् कारणं शंखयोजितः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः निशम्यात्म भुवा गीतम् कारणं शंखयोजितः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। भुवा ब्रह्मा द्वारा गीतम व्याख्या कारणम कारण शंकया भय से उज्जिता मुक्त ततः तब सर्वे सभी न्यवर्तन्त लौट गए त्रिदेवाय स्वर्ग लोक को दिवौकसः देवतागण जो स्वर्ग लोक के निवासी हैं। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। विष्णु श्री मैत्री ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्ग लोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। तात्पर्य, स्वर्ग लोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकार ग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, अतः वे ब्रह्मा के पास परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। इस संसार में चार मुख्य कार्यकलाप हैं, आहार निद्रा भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है। प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में जिसमें सूर्य तथा चंद्र लोक सम्मिलित हैं, और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसे ही सिद्धांत पाए जाते हैं। अन्यथा देवता अंधकार से इतना भयभीत क्यों होते। देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जन अधिकारी का अनादर करते हैं। यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सकें तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल व्यवस्था सुधर जाए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल भी हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हों, किंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सकें जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके, तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पात का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम शांतिपूर्वक वापस चले गए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस तीसरे स्कंद के इस 17वें अध्याय पर चर्चा के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे ताकि शक्ति प्राप्त हो सके और हम भागवत पर कुछ कह सकें।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेमनारत्कण्ठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। 16 अध्याय इस तीसरे स्कंद के पूरे हो चुके हैं, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 17वें अध्याय की आज चर्चा है। तो आज वर्णन होगा कि कैसे जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो क्या क्या लक्षण प्रकट हुए और फिर कैसे हिरण्याक्ष ने आतंक मचाया तो हिरण्याक्ष की दिग्विजय इस अध्याय का शीर्षक है। इसमें पहले कुछ श्लोकों में करीब 14 श्लोकों तक वर्णन किया जाएगा कि जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ उसके जन्म के पहले क्या क्या अशुभ लक्षण हुए और जन्म के बाद पृथ्वी पर सारे ब्रह्मांड में कैसी अवस्था हुई, तो उसके कारण केवल उसके जन्म से। और फिर 15वें श्लोक से आगे वर्णन करेंगे उसके बढ़ने का, उनके शरीर बढ़ा और उसने कैसे आतंक फैलाया, ये करीब 26वें श्लोक तक वर्णन होगा। और फिर 27वें श्लोक से वर्णन करेंगे कि जब वो वरुण देव से मिले तो उनका संवाद क्या हुआ। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं देवताओं का और असुरों के अंतर का। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बताते हैं कि देवताओं में और असुरों में यही अंतर है कि जब कष्ट होते हैं, भयभीत होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफें आती हैं तो देवता अधिकारियों के पास जाते हैं और असुर वो अधिकारियों को स्वीकार नहीं करते। तो यही अंतर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे जब देवताओं को भी भय हुआ, पहली बात वो बताते हैं कि इस जगत में हर कोई भयभीत है, चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो वो भी भयभीत रहता है। क्यों भयभीत रहता है? क्योंकि इस जगत का नियम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिस जगत में है वहां पर भय बना ही रहेगा। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अज्ञानवश व्यक्ति जब केवल पशु कार्यों में लगा रहता है, केवल खाना पीना सोना, भयभीत रहना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो फिर ये तो पशु जीवन है। तो देवताओं में और पशुओं में या देवताओं में और मनुष्यों में अंतर ये है कि देवता भी भयभीत होते हैं, लेकिन जब वो भयभीत होते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। दरअसल मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है जब हम लोग धर्म का पालन करना सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। कि चार चीजें हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, जिसका वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं कि चार चीजें पशु भी मनुष्यों में और पशुओं में समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशु भी नराणाम, पशुओं में और नरों में व्यक्तियों में दोनों समान हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ये उनमें अंतर है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना, अगर धर्म नहीं है, हीन है, पशु भी समाना, तो व्यक्ति पशु के समान है। तो इसलिए धर्म है जो पशुओं को और मनुष्यों को भेद करता है, और मनुष्यों में या मनुष्यों में भी या जीवों में, मनुष्यों में दो प्रकार के जीव हो सकते हैं, एक वो जो असुर हैं, एक दूसरे जो सुर हैं। तो एक भेद हुआ पशुओं में और मनुष्यों में, क्या भेद हुआ? धर्म का। और दूसरा भेद दो प्रकार के मनुष्यों में होता है, और वो क्या भेद है? जो देवता हैं, जो सुर हैं, वो आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ते हैं, वे आध्यात्मिक प्रगति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, भगवान की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। और जो असुर हैं मनुष्यों में ही, वे भौतिक प्रगति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। तो ये दो अंतर हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हम मनुष्य कहलाएं, और फिर धर्म में भी वो धर्म जो भगवान की ओर ले जाए, झूठा धर्म नहीं, कैतब धर्म नहीं, वो धर्म जो भगवान की ओर ले जाए, वो धर्म हमें देवताओं के स्तर पर रख सकता है, खड़ा कर सकता है। इस जगत में ये सारा जगत तीन गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसमें भी सत्वगुण में रहना अच्छा है, क्योंकि जब ये सत्वगुण की विशुद्धता आती है, जब ये सत्वगुण पूर्ण शुद्ध रूप में होता है, तो ये आध्यात्मिक गुण हो जाता, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। तो जो आध्यात्मिक भाव है जीव का, वो विशुद्ध सत्व गुण है। तो इसलिए सत्व गुण में कम से कम रहना ये देवताओं का कार्य है। देवताओं को सत्व गुण में माना जाता है, तो उनको सत्व गुण में रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी देवता भी अपने गुण को, अन्य गुणों को भी प्रकट कर देते हैं, लेकिन प्रमुखता होती है। तो सत्व गुण के लक्षण क्या हैं? सत्व गुण के लक्षण हैं कि व्यक्ति संतुष्ट होता है, व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है। तो अगर हमें सुर और असुरों का भेद जानना है, तो सुर वो हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, प्रभुपाद लिखते हैं, एक अधिकारी के पास जाते हैं। तो भय उनको भी है, लेकिन फिर भी भयभीत होने पर वे अधिकारी की शरण लेते हैं, भगवान के भक्त, भगवान के प्रतिनिधि की शरण लेते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, वो भयभीत तो होते हैं, लेकिन भयभीत होने पर एक भगवान के भक्त की शरण नहीं लेते, अधिकारी की शरण नहीं लेते, अपने मन से उस दुख के निवारण का प्रयास करते हैं कि किस तरह मैं अपने बल पर, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से इस दुख का निवारण करूं, इस भय का निवारण करूं। और फिर कभी भी भयभीत ही रहते हैं, क्योंकि उससे निवारण नहीं होता। लेकिन यहां हम देखते हैं अधिकारी के पास जाने से उनके भय का निवारण हो गया, वो जान गए कि अच्छा, भय इसलिए, ये कष्ट इसलिए है। तो कष्ट बना रहा, देखिए बहुत सुंदर बात यहां बताई गई कि कष्ट बना रहा। ऐसा नहीं है कि जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो आने के बाद सारा अंधकार दूर हो गया, सारे कष्ट दूर हो गए, नहीं। लेकिन उन्हें अपने कष्टों का कारण पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये कष्ट बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए वो संतुष्ट होकर चले गए। तो एक भक्त को भी जब दुख आए, कष्ट आए, तो उसके निवारण के लिए एक भक्त के पास जाना चाहिए, अपने अधिकारी के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि गुरु जादू से सारे दुखों को दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने सारे दुख दूर नहीं कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि गुरु जादू से, लेकिन गुरु मार्ग देंगे। ब्रह्मा जी ने मार्ग दिया कि देखो इसका कारण ये है, और भगवान आएंगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने दो चीजें प्रदान कर दी, एक मार्ग और दूसरी श्रद्धा। ब्रह्मा जी ने वैसे तीन चीजें दी, पहली चीज ब्रह्मा जी ने दी कारण, दूसरी चीज ब्रह्मा जी ने दी निवारण, और तीसरी चीज ब्रह्मा जी ने दी समर्पण। तो ये तीन चीजें ब्रह्मा जी ने देवताओं को दी, जिससे ब्रह्मा जी संतुष्ट, जिससे सारे देवता संतुष्ट हुए। तो हमें भी जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, या हम किसी भक्त के पास जाते हैं, तो गुरु हमें तीन चीजें देते हैं। कारण, हमारे कष्टों का कारण क्या है? अविद्या, आसक्ति, ये भौतिक जगत का अज्ञान। तो गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं, हमें सिखलाते हैं। और निवारण, निवारण क्या है? निवारण देते हैं कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भक्ति के मार्ग को अपनाइए। और फिर उन्होंने क्या विश्वास दिलाया? श्रद्धा दी, समर्पण दिया कि चिंता नहीं करो, भगवान विष्णु इसका वध करेंगे। तो वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो समर्पण कहलाता है, कि जहां पर हमें पूर्ण श्रद्धा है, अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन, ये समर्पण का एक लक्षण है। तो जब व्यक्ति को समर्पण करना हो,
तो उसको ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे। अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, कृष्ण ही पालक हैं, तो कृष्ण को ही समर्पण करना। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यत इति विश्वासो गोतृप्ते वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यं षड्विधा शरणागति। शरणागति क्या है? ये छह चीजें, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। जो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए अनुकूल हो, फिर चाहे भौतिक जगत में वो कितना ही गिरा हुआ चीज क्यों ना हो, उसको स्वीकार करना। जैसे अर्जुन के लिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल था अपने ही गुरु का वध करना, अपने ही भाई बंधुओं का वध करना। समाज की दृष्टि से, भौतिक जगत की दृष्टि से बड़ा घृणित कार्य है। कौन व्यक्ति होगा जो अपने गुरु को मारेगा? कौन व्यक्ति होगा जो अपने ही भाइयों को मारेगा और फिर वो बहुत महान भक्त कहलाएगा? अर्जुन कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया, अपने लिए नहीं किया। तो इसीलिए अनुकूल था वो, भौतिक दृष्टि से घृणित था वो कार्य, गलत था वो कार्य, नैतिकता से गलत था। और कहना चाहिए कुछ धर्मशास्त्रों के आधार पे भी गलत था, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता इन सब से ऊपर है। तो इसलिए अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। ऐसी हर स्थिति जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, प्रतिकूल मतलब उससे भक्ति में बाधा आती हो, तुरंत त्याग देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज राजा बने रहे तब तक जब तक श्री कृष्ण की प्रसन्नता थी, श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे। जैसे ही श्री कृष्ण चले गए, वर्जनम, फिर उन्होंने उसको बनाए नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अब तक मैं राज्य कर रहा था कृष्ण के लिए, अब कृष्ण नहीं है, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रतिकूल से वर्जनम मतलब ऐसी कोई चीज जो बड़ी अच्छी लगती हो, हमें बड़ी आकर्षक लगती हो, हमें बड़ा आनंद देती हो, सुविधा देती हो, वर्जनम, उसको त्याग देना चाहिए अगर वो बाधा है श्री कृष्ण की प्राप्ति में, श्री कृष्ण की प्रसन्नता में। तो अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यत इति विश्वासो। और ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कोई चिंता नहीं। ग्वाल बाल सांप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण, विश्वास है कृष्ण रक्षा करेंगे। तो हमें विश्वास होना चाहिए हर अवस्था में कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यत इति विश्वासो उपतृप्ते भरणं तथा, कृष्ण ही हमारा पालन करेंगे। और पूर्ण विश्वास, जैसे हम लोग कथा सुनते हैं एक आचार्य की कि जिन्होंने लिख दिया भगवद गीता में, योगक्षेमम वहामि अहम्, नहीं नहीं ये कृष्ण वहामि अहम् नहीं होना चाहिए, काट दिया उसको। कृष्ण खुद नहीं करते हैं पालन, किसी के द्वारा करवाते हैं। अरे कृष्ण तो भगवान है। नहीं, दोनों आए, कृष्ण और बलराम पीठ पर लाद कर आए और घर में ला कर दिया कि ये लीजिए, आपके पति ने भेजा है। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा वहां पर कटा हुआ नहीं था वहामि अहम्। कृष्ण ने प्रमाणित किया कि मैं ही भक्तों का पालन करता हूं, मैं ही पोषण करता हूं, इसलिए चिंता मत करो। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, पूर्ण समर्पण करो, और फिर कार्पण्य, बड़ी नम्र भाव से रहो, नम्रता, ये समर्पण का लक्षण है। तो इसीलिए देवताओं और असुरों में ये अंतर है। तो ऐसे प्रभुपाद फिर आगे अन्य तात्पर्य में भी वर्णन करते हैं देवताओं का। तो हिरण्याक्ष का जन्म होने वाला था, सारे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे, पिछले अध्याय में भी हमने देखे वो अशुभ लक्षण। और फिर उनका जन्म हुआ, और पहले वर्णन किया है कि पहले हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और फिर हिरण्यकश्यप का। तो उनका फिर जन्म हुआ और जन्म होते ही जो पृथ्वी पर उत्पात हुआ, मैत्री मुनि वर्णन करते हैं कि इतने बड़े असुर थे ये दोनों कि इतना उत्पात हो गया, भूकंप आ गया पृथ्वी में केवल उनके जन्म मात्र से, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, जन्म लिया था, भूकंप आ गया पृथ्वी। तो उस समय के वर्णन वो श्लोकों में करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो कहते हैं भूकंप आ गया, समुद्र में उफान आ गया, समुद्र अपनी सीमा तोड़कर बाहर आ गया और सारे जितने ग्रह थे जैसे सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा को घने बादलों ने घेर लिया, उनका प्रकाश चला गया, वायु बड़ी तेजी से बहने लगी। और तो और वो वर्णन करते हैं कि गांवों में जो लोमड़ी थी वो जोर जोर से रोने लगी, कुत्ता चिल्लाने लगा, कुत्ता रोने लगा और गधे नाचने लगे। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी गधे भी अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं इसलिए कभी कभी नाचने लगते हैं, लेकिन ये गधों का नाचना बड़ा अशुभ है, शुभ नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कभी आप गधों को नाचते या भागते देखें इधर उधर तो बड़ा शुभ अच्छा होगा, कुछ अच्छी चीज हो रही है, नहीं, बड़ा अशुभ है। तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे अलग अलग, और पक्षी जो हैं वो घबराने लगे, भागने लगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन किए गए कि क्या क्या पृथ्वी में, सारी जगह अंधकार, धुआं, और बताते हैं कि बादलों के बिना ही बहुत सारी बिजली कड़कने लगी। तो बादल थे नहीं लेकिन बिजली कड़क रही है, आवाजें आ रही हैं, बड़ा भयानक पूरा वातावरण हो गया, जिसका वर्णन मैत्रेय मुनि करने लगे। और वो कहते हैं कि जो गायें थी वो बड़ी भयभीत हो गई और गायों ने दूध की जगह खून देना प्रारंभ, उनके दूध की जगह से खून आने लगा। जब उनको धोआ दोहा जाता था, गायों को दोहते हैं तो दूध की जगह खून आ रहा था, इतना वो भयभीत थे। और जो अलग अलग मंदिरों में विग्रह थे, अलग अलग मंदिरों में जहां भी मूर्तियां विग्रह थी, वर्णन है कि उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, वो आंसू बहाने लगे वो मूर्तियां, क्या अब क्या होने वाला है, ये दोनों बड़े इतने बड़े असुर प्रकट होने वाले हैं। तो ऐसे जितने बड़े बड़े वृक्ष थे वो सब गिरने लग गए हवाओं से, तेज हवाएं चली, तो ऐसे ये लोग दोनों प्रकट हुए। तो देखिए प्रकट होने पर ही इन्होंने संकेत दिया कि हम क्या करने वाले हैं, समाज में क्या होने वाला है। और फिर इनको नाम दिए गए, जो पहले जिसका जन्म हुआ उसको हिरण्याक्ष नाम दिया गया, हिरण्याक्ष छोटा था लेकिन उसका जन्म पहले हुआ, और हिरण्यकश्यपु जिसका जन्म बाद में हुआ उसको हिरण्यकश्यप नाम दिया गया, हिरण्यकश्यपु। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो जो पहले आता है वो छोटा होता है, क्योंकि उसने बाद में शरीर धारण किया होता है, जो पहले धारण करता है वो पीछे आता है। तो जब जुड़वा बच्चे हों तो जो पहले आए उसको छोटा मानना चाहिए और जो बाद में आए उसको बड़ा माना जाता है। तो ऐसे इनका जन्म हुआ और फिर ये बड़े होने लगे, विशाल होने लगे। प्रभुपाद एक तात्पर्य में जहाँ ये वर्णन है कि ऐसे इतने सारे उत्पात हुए, तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे जैसे जहाँ भी ये जन्म होता है असुरों का तो ऐसे उत्पात होते हैं, और आजकल समाज में उत्पात हो रहे हैं, हम भी लोग सुन रहे हैं, कभी सुनामी आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, बहुत सुनते हैं हम लोग। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये बतलाते हैं कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आसुरी जन्म हो रहा है, कोई देव जन्म नहीं हो रहा, असुरों का जन्म हो रहा, केवल शूद्र ही हैं, कोई संस्कार से उत्पन्न नहीं हो रहा। और जो समाज में व्यवस्था, वो कहते हैं कि देखिए जब असुर प्रकट होते हैं तो देखा कि सूर्य छुप गया, चंद्रमा की किरण नहीं आ रही है, ऐसी चीज आज कई देशों में देखी जा सकती है कि जहां पर कई कई दिन सूर्य ही नहीं निकलता है, या निकलता है तो बहुत लंबे समय तक रहता है, बड़ी विचित्र चीजें कई देशों में देखी जाती है। अभी 2-3 दिन पहले एक भक्त ने हमें फोन किया था न्यूजीलैंड से, तो उस समय यहाँ पर दोपहर के 2 बजे थे, तो हमने ऐसे उनसे पूछ लिया कि कितना समय हुआ है, तो उन्होंने कहा कि रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक सूर्य डूबा नहीं है। रात के 10 बज रहे थे तो उन्होंने कहा अभी तक सूर्य डूबा नहीं है यहाँ पर। हमने कहा सूर्य डूबा नहीं है तो सोएंगे कब लोग, और सुबह बोले सुबह 4 बजे फिर सूर्य हो जाता। अब बताइए आदमी सोए कब, रात को तो 10 बजे तक अगर सूर्य ही नहीं डूबा, उसके बाद डूबेगा, उसके बाद अंधकार होगा, और फिर 12-1 बजे सोएंगे और फिर से 4 बजे सूर्य आ जाएगा, क्या स्थिति होगी वहाँ के लोगों की, पागल हो जाते होंगे वो लोग। और कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ सूर्य केवल आधे घंटे के लिए निकलता है हर समय, तो आधे घंटे के लिए निकलता है उसके बाद बस पूरा दिन अंधकार रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये जो शहर है, ये जो देश है, ऐसे इन सब में असुरों ने जन्म लिया हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। और फिर वो समझाते हैं कि आसुरी जन्म कैसे होता है, और वो गर्भाधान संस्कार की बात करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत आवश्यक है गर्भाधान संस्कार। जिस व्यक्ति का गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता, उसको शूद्र ही मानना चाहिए। अब हम सबको तो नहीं पता कि क्या हुआ था गर्भाधान संस्कार, कईयों के तो हम सबके माता पिता भी है नहीं कि हम जाकर पूछें किया था कि नहीं किया था, और नहीं किया था तो रोए कि अरे 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 क्या होगा हमारा, कोई भक्ति में प्रगति नहीं, सब शूद्र हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि अरे हम लोगों को तो फिर रोना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे माता पिता ने गर्भाधान संस्कार किया था कि नहीं, हम लोग ऐसे ही प्रकट हो गए, अगर ऐसे हुए हैं तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमें वो श्लोक याद आया जिसमें कहा गया है किराठुनांद्र पुलिंद पुलकश आधीर शुंभायवनाख सादयः यन्ने च पापायदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। निकल जब ऐसे लोग शुद्ध हो सकते हैं तो ठीक है, हम लोगों के लिए भी आशा है भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस एक ही आशा है के लिए, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भगवान का नाम लेंगे तो हम लोग तो हैं नहीं ब्राह्मण, हम लोग तो हैं नहीं कलौ शूद्र संभवा, लेकिन फिर भी नाम लेने से शुद्ध्यन्ति पवित्र हो सकते हैं। तो इस संस्कार गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक है, प्रभुपाद लिखते हैं इससे अच्छी संतति होती है। तो ये गर्भाधान संस्कार क्या है, कई शास्त्रों में इसके अलग अलग वर्णन किए गए हैं, प्रभुपाद भी समझाते हैं अलग अलग तात्पर्यों में भागवतम के, कि गर्भाधान संस्कार का अर्थ है कि पति और पत्नी शुद्ध चेतना में एक शुद्ध जीव को, एक शुद्ध आत्मा को आकर्षित करें जिसके द्वारा संतति अच्छी हो। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर सारे जगत में गर्भाधान संस्कार करके संतान की उत्पत्ति की जाए तो जितनी भी सारे कष्ट हैं बंद हो सकते हैं, शांति आ सकती है, क्योंकि असुर पैदा नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये किया नहीं जाता है इसलिए सारे कष्ट हैं। तो गर्भाधान संस्कार क्या है, अलग शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह के बाद 3 दिन तक पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और फिर 4th दिन पर भोजन बनाकर भगवान को अर्पण करके फिर उसको वितरित करना चाहिए। क्या क्या बनाना चाहिए वो भी दिया गया है, और उसके बाद फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4th दिवस पर, इसीलिए कभी कभी गर्भाधान संस्कार को चतुर्थी क्रिया भी कहते हैं, चतुर्थी क्रिया, क्योंकि ये 4th दिन की जाती है। तो ऐसे सब करके और फिर पूर्ण रूप से मंत्रों का उच्चारण, उपनिषदों में मंत्र भी दिए गए हैं कि कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण पति पत्नी की कान में करते हुए फिर संतान की उत्पत्ति के लिए कार्य करें, तब सही सही आत्मा या शुद्ध आत्मा आकर्षित होती है उस गर्भ में। तो ऐसे उसके कई और नियम हैं, किन दिवसों पर करना चाहिए, कैसे समय पर करना चाहिए। जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा, दीति ने गलत समय पर किया और इसीलिए हिरण्याक्ष प्रकट हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। तो इसलिए दिन के समय नहीं, संध्या के समय नहीं, ये केवल रात्रि के समय होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, इवन दिवस भी कौन से दिवसों में होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि ये अशुभ ग्रह माने गए हैं, तो फिर उस समय पर भी नहीं होना चाहिए। वैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं इस तात्पर्य में कि ग्रह भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं। बहुत सी चीजें शुभ अशुभ होती हैं, स्थान शुभ अशुभ हो सकता है, समय शुभ अशुभ हो सकता है। इसी तरह प्रभुपाद कहते हैं ग्रह भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं। तो प्रधानतः शनि और मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है, तो इसीलिए उन दिवसों पर भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे गर्भाधान के बहुत नियम हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि पति और पत्नी शुद्ध चेतना में भगवान का स्मरण करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, भगवान की सेवा के हेतु कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए गर्भ को धारण करें, ये उद्देश्य है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो सही दृष्टि में गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ जीवन का पालन करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम भक्तों को, प्रभुपाद लिखते हैं, कम से कम भक्तों को इन संस्कारों को करके कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करना चाहिए। पशुओं की तरह संतान की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। पशुओं को कोई शुद्ध चेतना नहीं होती, पशु केवल आनंद लेने के लिए इसको करते हैं और फिर संतान उत्पत्ति हो जाती। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, गर्भाधान भी गर्भधारण भी सबकी अनुमति लेके किया जाता है। गर्भाधान का एक नियम है कि माता पिता अन्य सब वरिष्ठों का, भगवान का, विशेषतः भगवान की स्मरण करते हुए अनुमति लेते हुए किया जाता, तो इससे संतान अच्छी उत्पन्न होती है। तो इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक। आजकल तो लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है, लाते हैं जला देते हैं खत्म, किसी को कुछ पता ही नहीं है कौन से श्लोक बोलने हैं, क्या बोलना है, कौन से वेद में, कौन से उपनिषद, कुछ नहीं, बस लाया जला दिया, अंतिम संस्कार हो गया, टायर रखा, रबर के टायर। आजकल तो इतना बुरी अवस्था है, बताइए, आदमी को जलाने के लिए रबर के टायर लगाए जाते, लकड़ी जलती, कलयुग कितना बढ़ गया है देखिए, लकड़ी जलती नहीं है तो रबर, वो भी नहीं जले तो घासलेट डाला जाता है, रॉकेट क्या बोलते हैं उसको, कि मरे जल्दी जले और हम लोग जाएं लकड़ी क्योंकि एक नियम अभी तक लोगों ने पालन कर रखा है कि जब तक अग्नि नहीं लगती खड़े रहते हैं। तो कितनी बुरी अवस्था हो रही है, हमको तो देख कर दुख होता है कि लकड़ी जल नहीं, लोग क्या क्या डालते हैं पता नहीं। तो कोई संस्कार नहीं है, अंतिम संस्कार होते हैं, उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ये कुछ नहीं। तो गर्भाधान संस्कार नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं है, बीच के सारे संस्कार तो होते ही नहीं। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि द्विज कौन हो सकता है, तो द्विज मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, उसको द्विज कहा जाता है। तो द्विज होने की योग्यता भी प्रभुपाद लिखते, दो योग्यता है द्विज होने की। पहली, उसका गर्भाधान संस्कार हुआ होना चाहिए, तब वो द्विज बनने के योग्य है। और दूसरा, गुरु से उसको मंत्र दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तब वो द्विज बनता है। जैसे हम लोग धारण करते हैं जनेऊ इत्यादि, तो तब वो द्विज बनता है। और फिर जब ज्ञान ले लेता है, ब्रह्म जानति, ब्रह्म को जानने लगता है, तब ब्राह्मण कहलाता है। तो देखिए, द्विज बनने के लिए भी दो योग्यताएं हैं, पता नहीं हम लोगों में है या नहीं है। हम लोग अपने आप को ब्राह्मण कुल का कहते हैं या इस कुल का कहते हैं, बड़ा गर्व करते हैं कि ये ब्राह्मण कुल में जन्मा नहीं, ये क्षत्रिय कुल, इसका इसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है, इसका क्षत्रिय जैसा है, इसका वैश्य जैसा है, ये पैसा बहुत कमाता है, इत्यादि इत्यादि। कुछ नहीं है, कलो शूद्र संभवा, केवल शूद्र है। और द्विज भी तब कहलाएंगे जिसको अपने को ब्राह्मण कहलाने का अहंकार है उसको जाके अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि गर्भाधान किया था या नहीं किया था। नहीं किया था तो शूद्र है। प्रभुपाद लिखते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्षमा मांगते हैं आप सबसे, अगर यहाँ बैठे हुए ब्राह्मणों को बुरा लग रहा होगा तो। तथा कथित ब्राह्मण। तो ये गर्भाधान संस्कार का वर्णन करते, तो नहीं होगा तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न होंगे। तो उत्पन्न हुए, उनका वर्णन है कि बढ़ने लगे और ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ गए कि उनकी उनके शरीर ने चंद्रमा और सूर्य को छुपा दिया, आकाश तक उनका आकार हो गया, उनका सर आकाश में, पांव पृथ्वी पर, और सूर्य चंद्रमा की लाइट कहां से आएगी, वो तो उन्होंने रोक दी है। तो ऐसे इतना बड़ा आकार हो गया उनका, और हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को दोनों को ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया, और फिर सारे जगह आतंक मचाने लगे। तो हिरण्यकश्यपु का वर्णन तो आगे आएगा, इस अध्याय में केवल एक श्लोक में वर्णन किया कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बड़ा आतंक मचाया। तो ये आगे सातवें स्कंद में हम लोग बड़े विस्तार से उसके आतंक के विषय सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर हिरण्याक्ष का वर्णन किया जा रहा है। तो हिरण्याक्ष वो अपने भाई के प्रति बड़ा समर्पित था। देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि व्यक्ति को दोस्ती मित्रता के लिए जाना जाता है क्योंकि उसने इतनी अच्छी मित्रता की। अरे जब असुर से मित्रता करने का लाभ क्या है, असुर के प्रति समर्पण दिखाने का लाभ क्या है। यहां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के प्रति पूर्ण समर्पित है कि मेरा भाई, बस वो कहेगा मारो मारूंगा, वो कहेगा सारे ब्रह्मांड में आग लगा दो आग लगा दूंगा। ये कोई मित्रता नहीं है। एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि आप लोग क्यों नहीं मित्रता को मानते, कर्ण ने इतनी अच्छी मित्रता की कि मित्रता के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। हमने कहा कि मान लीजिए आपको किसी एक हत्यारे ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वो रोज उसका काम हत्या करना, चोरी करना, डकैती डालना, तो क्या आपके आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप भी उसके लिए चोरी करो, डाका डालो, हत्याएं करो? क्या ये कर्तव्य है आपका? ये सच्ची कृतज्ञता है? नहीं, ये तो मूर्खता है। तो सच्ची कृतज्ञता क्या है? सच्ची कृतज्ञता है उसको समझाना, उसको बंद कराना। अगर सही में आप प्रेम करते हो तो उसके उन कार्यों को बंद कराकर उसको उस जगह से दूर ले जाना, उसको पाप बंद कराना और खुद भी पाप नहीं करना, खुद भक्ति करना और अपनी भक्ति का लाभ अपने उस पिता को देना जो हत्यारा है। ये सच्चा प्रेम है। तो इसलिए सच्चा प्रेम ये नहीं कि मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उनका काम है हत्या करना तो मैं भी, उन्होंने चाकू से हत्या की, मैं AK-47 लेकर हत्या करूंगा, कोई लाभ नहीं। ये कोई भक्ति नहीं, ये कोई प्रेम नहीं, ये कोई मित्रता नहीं। तो इसीलिए हिरण्याक्ष अपने भाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। नाम तो कश्यप मुनि ने दोनों को दे दिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, तो पूर्ण रूप से समर्पित। और फिर उसने उसकी प्रसन्नता के लिए सारे ब्रह्मांड में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो चला गया वो, घूमते घूमते चला गया स्वर्ग में। अब कोई पूछ सकता वो स्वर्ग कैसे जा सकता था? अरे इतना बड़ा असुर जो खड़ा हो जाता था तो सूर्य उसके लिए स्वर्ग जाना कौन सी बड़ी बात है, सारे ब्रह्मांड को स्वर्ग क्या, वो तो पृथ्वी के साथ अभी खेलने वाला है। तो सारे ब्रह्मांड को हिला दिया, स्वर्ग में चला गया, जाके देखा कहाँ है इंद्र की तरह, इंद्र भाग गए पहले ही। इंद्र को पता चला हिरण्याक्ष आ रहा है, इंद्र गायब, हिरण्याक्ष ढूंढ रहा है कहाँ है देवता, कोई देवता नहीं, इंद्र नहीं कोई देवता नहीं, ये वर्णन है इस अध्याय में, कोई देवता नहीं। और फिर अब वो वहां से घूमता घामता पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर करे क्या, उसके साथ लड़ने के लिए कोई नहीं, तो समुद्र में घुस गया। ये वर्णन है कि वो समुद्र में घुस गया। तो समुद्र में घुसकर क्या कर रहा है, कई वर्षों तक वो जो लहरें आ रही थी उनको काट रहा था, अपने गदा से उनको मार रहा था लहरों को। कुछ तो करे, कि शक्ति है क्या करे, कोई लड़ने के लिए नहीं है। जब व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति हो जाती है यही नुकसान है, ज्यादा धन आ जाए जब उसको पता नहीं है क्या करना है तो यही नुकसान है, सारे गलत काम करता है। अब देखिए समुद्र में घुसकर लहरों को मार रहा है, अरे कौन सी बड़ी बड़ा काम कर रहा है। अगर कोई पूछे समझो उससे कि कितना बड़ा काम किया तुमने कई वर्षों तक लहरों को मारा, लेकिन वो भी क्या करे, कोई था ही नहीं उससे युद्ध करने का, अपने भाई से तो कर नहीं सकता था, वो तो भाई है तो किससे करे, मार रहा था। तो ऐसे मारते मारते फिर वो विभावरी, विभावरी मतलब जो वरुण देव की नगरी है वहां पहुंच गया। वरुण देव जल के देवता हैं और उन्होंने बहुत से युद्ध पूर्व में किए हुए हैं जो हिरण्याक्ष ने सुन लिए थे। तो हिरण्याक्ष पहुंच गया विभावरी और देखिए वहां जाके क्या किया, युद्ध नहीं किया, चरण पकड़ लिए वरुण देव के, प्रार्थना करने लगा वरुण देव से। हिरण्याक्ष क्या प्रार्थना करने लगा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मतलब वो दरअसल चरण नहीं पकड़ रहा था, वो तो केवल एक हंसी कर रहा था वरुण देव की कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध करना चाहता हूं आपसे। आप तो बड़े महान हैं, आपने तो बड़े बड़े युद्ध किए हैं, आप तो बहुत लोगों को जीत चुके हैं, आपसे कोई जीता नहीं है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मतलब दूसरे शब्दों में क्या कह रहा था, तुम्हें बड़ा अहंकार है ना, तो मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। तो ये डायरेक्ट कहने के बजाय घुमा के बड़े प्रेम, नहीं आप बड़े महान हैं, आपसे मैं युद्ध करना चाहता हूं। वरुण देव को बहुत क्रोध आया उसके इस भाव को देखकर, लेकिन फिर भी क्योंकि सभी देवताओं ने सुन रखा था कि इसका तो उद्धार केवल कृष्ण ही करने वाले हैं, विष्णु करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा वरुण देव ने कि देखो हिरण्याक्ष, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है ना, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो, मुझसे युद्ध करना चाहते हो। अरे मुझसे करके क्या मिलेगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं अभी, अभी तो मेरी उम्र हो गई, हमने जब किए थे तब किए थे, लेकिन अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बताता हूं कि तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए एक ही व्यक्ति है, उसको ढूंढो, और वो है विष्णु। वो जब तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम भूमि पर लेटे होगे और कुत्ते तुम्हारे आसपास घूम रहे होंगे। ऐसा वरुण देव का, देखिए देवता भी कभी कभी ऐसी बातें कहते हैं, कुत्ते घूम रहे होंगे, उनका अर्थ है कि मर जाओगे तो कुत्ते खाएंगे तुम्हारे शरीर को, इतना अहंकार मत करो इस शरीर पर। वैसे बहुत सुंदर बात है समझने के लिए, हमें अपने शरीर पर बहुत अहंकार होता है ना, हमें लगता है मुझसे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं, कितना सुंदर हो रोज शीशा, इसीलिए घर में कुछ हो ना हो लेकिन शीशा जरूर होता है, क्योंकि रोज देखना है आज ज्यादा सुंदर लग रहा हूं कि कल सुंदर लग रहा था, नहीं आज ज्यादा सुंदर लग रहा। व्यक्ति रोज अपने आप को यही सोचता है कि मैं आज ज्यादा सुंदर लग रहा। इसीलिए देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स मतलब वो जो वो सब चीजें बनाते हैं जिसको लीपापोती कर लेते हैं ना लोग, जिससे सुंदर नहीं भी है तो भी सुंदर लगने लगता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोग जिन फिल्म अभिनेताओं को पर्दे पर देखते हैं अगर गलती से बिना मेकअप के देख लेंगे तो पहचानेंगे नहीं उनको, सही में। हमने तो कई बार देखा है बम्बई में, तो हम लोग होते थे जब इन कॉलेज वगैरह में थे हम लोग, तो कभी कभी वो दिख जाते थे तो दूसरे को किसी को बताना पड़ता था, मालूम है ये वो है, बोले अरे ये वो है, बोले हाँ ये वो है, पता ही नहीं चलता क्योंकि मेकअप नहीं होता कभी कभी। वैसे वो लोग मेकअप के बिना बाहर ही नहीं निकलते, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर गलती से आप देख लो तो बिल्कुल नहीं पहचानोगे। साधारण आपकी आपसे भी शायद अच्छे नहीं दिखते, लेकिन जब वो सारा मेकअप हो जाता है, लाइट्स आती हैं, कैमरे का एंगल बराबर होता है, पता है ये लोगों को पैसा क्यों दिया जाता है, अच्छे जो मेकअप मैन है उनको बहुत पैसा मिलता है, कैमरा मैन को पैसा बहुत मिलता है, लाइट्स वालों को मिलता है, क्यों, क्योंकि अगर वो लोग सब ठीक करेंगे तब ये अभिनेता या अभिनेत्री ऐसे लगेगी कि लोग अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जीवन समर्पण उनके सौंदर्य पर नहीं, उनके मेकअप पर होता है। तो इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है और बड़े बड़े इश्तेहार भी हम लोग देखते हैं, 6 हफ्ते में गोरे हो जाइए, गोरेपन की क्रीम है, या फिर 6 हफ्ते में पुनः जवान हो जाइए, कितना बड़ा धोखा है। अरे बूढ़ा व्यक्ति कैसे जवान हो सकता, लेकिन आजकल बहुत कुछ किया जाता है। बूढ़े होने पर क्या होता है, ये जो गाल वगैरह ऐसे लटक जाते हैं तो आजकल एक सर्जरी कराई जाती है, तो वो लोग जो जंघा है वहां से मांस निकाल के, क्योंकि यहाँ बहुत एक्स्ट्रा मांस होता है, तो वो निकाल के शरीर पे लगा के उसको ऊपर कर देते हैं, इसको फेस लिफ्टिंग कहा जाता है, तो ऊपर कर देते हैं मतलब फेस लिफ्टिंग, चेहरा ऊपर उठा दिया और फिर व्यक्ति जवान लगने लगता है। अरे क्या फायदा है, आप सोचिए बिल्डिंग पुरानी हो गई है, अंदर से सारा टूट गया है, वो जो अंदर का लोहा है वो भी जंग लग के सड़ के गिरने वाला है, और बाहर आपने पेंट कर दिया है बिल्डिंग को, क्या होगा? क्या बाहर के पेंट से बिल्डिंग गिरेगी? नहीं, निश्चित गिरेगी, उल्टा और ज्यादा गिर जाएगी बाहर से। तो यही होता है, अंदर की बिल्डिंग पुरानी हो गई, सारी हड्डियों में जान नहीं है, कब टूटेगी पता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन बाहर से लीपा पोती कर लिया, उसको फेस लिफ्टिंग करा लिया, पेंटिंग कर दिया, पेंटिंग मतलब सॉरी वो क्रीम व्रीम लगा दिया, जो भी हो गया, और व्यक्ति एकदम अच्छा दिख रहा है, और एकदम बढ़िया मेकअप करके बाहर निकला, क्या होगा? मृत्यु आ गई, मर गया। बिल्डिंग रुकने वाली नहीं है, पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। तो ये चीजें बाहरी हैं, तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि जानना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति के लिए शरीर मिला है, हम उसका उपयोग करें। तो अपने बल पर, अपने शौर्य पर हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और अंत क्या होना है इसका, जो वरुण देव बता रहे हैं, वो जान लेना चाहिए कि हम कितना ही शरीर को सुंदरता पर चले जाएं, कितना उसको सुंदर माने, अंत में क्या है? या तो अग्नि में जल जाएगा, या कीड़े खाएंगे, या कुत्ते खाएंगे उसको। और उस शरीर को बनाने के लिए जिसको हम अग्नि में डालने वाले, जलाने वाले हैं, कुत्ते खाने वाले हैं, उसके लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, मुझसे सुंदर कोई और है ही नहीं, ये मूर्खता है। तो वरुण देव ये समझा रहे थे कि तुम इतना अपने पर अहंकार कर रहे हो, अपने शरीर पर, कुत्ते खाएंगे तुम्हारे शरीर को, और अगर तुम्हें बहुत अहंकार है तो जाओ विष्णु से युद्ध करो, वही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। तो अगले दो अध्यायों में, ये 17वां अध्याय है, 18वें और 19वें, भगवान का युद्ध हिरण्याक्ष के साथ, और कैसे भगवान वराह देव के रूप में, वरुण देव ने ये कहा था अंतिम श्लोक में, वरुण देव कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को मारने के लिए भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, जैसे वो वराह देव का लेने वाले। तो फिर अगले दो अध्यायों में हम लोग हिरण्याक्ष के वध की कथा को सुनेंगे।